क्या आप भी अपना पॉडकास्ट बनाने का सोच रहे हैं? बहुत अच्छा इरादा है, एंकर ट्राई कीजिए ना, ये पॉडकास्ट बनाने का सबसे आसान तरीका है। सबसे पहली बात, ये बिल्कुल फ्री है। दूसरी बात, इसमें इतने सारे टूल्स हैं जिससे आप अपने फ़ोन और कंप्यूटर पर रिकॉर्ड और एडिट कर सकते हैं। और तीसरी बात, आप अपने पॉडकास्ट को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं जिससे इसे Spotify और दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर सुना जा सके। तो देर किस बात की, डाउनलोड कीजिए ये फ्री एंकर ऐप या विजिट कीजिए anchor.fm। आज ही बनाइए अपना पॉडकास्ट।
जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग में एक बार फिर आप सबका स्वागत करती हूँ। अब तक हमने इस अध्याय से 31 श्लोक पढ़े हैं, आज उससे आगे प्रारंभ करूंगी। लेकिन उससे पहले एक बार दोहरा लेते हैं, भगवान ने अब तक कर्मों के तत्व की विवेचना की है। कहते हैं, योगी पुरुष कुछ दैव यज्ञ उपासना में मन धरें, ब्रह्माग्नि में कुछ यज्ञ द्वारा यज्ञ ज्ञानी जन करें, कुछ होमते क्षेत्रादि इंद्रिय संयमों की आग में, इंद्रिय अनल में कुछ विषम शब्दादि आहुति देर में, कर आत्म संयम रूप योगानल प्रदीप्त सुज्ञान से, कुछ प्राण एवं इंद्रियों के कर्म हो में ध्यान से, कुछ संयमी जन यज्ञ करते योग तप से दान से, स्वाध्याय से करते यति कुछ यज्ञ करते ज्ञान से, कुछ प्राण में होमे अपान व प्राण वायु अपान में, कुछ रोक प्राण अपान प्राणायाम ही के ध्यान में, कुछ मिताहारी हवन करते प्राण ही में प्राण है, क्षय पाप यज्ञों से किए ये यज्ञ विज्ञ महान है, जो यज्ञ का अवशेष खाते ब्रह्म को पाते सभी, परलोक तो क्या यज्ञ त्यागी को नहीं यह लोक भी। यानी यज्ञ के सिवा इस लोक से मोक्ष का कोई और साधन नहीं है। तो आगे प्रारंभ करती हूं। एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे, कर्म जान विद्धितान सर्वानेवं ज्ञात्वा विमोक्षसे। यानी इस प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ वेद की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं, उन सब यज्ञों को तू कर्म जन्य जान, इस प्रकार जानकर यज्ञ करने से तू कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। अब 24वें से 30वें श्लोक तक जिन 12 यज्ञों का वर्णन किया गया है, उनके सिवाय और भी अनेक प्रकार के यज्ञों का वेद की वाणी में विस्तार से वर्णन किया गया है। कारण कि साधकों की प्रकृति के अनुसार उनकी निष्ठाएं भी अलग अलग होती हैं और तदनुसार उनके साधन भी अलग अलग हो सकते हैं। तो वेदों में सकाम अनुष्ठानों का भी विस्तार से वर्णन किया गया है, परंतु उन सब से नाशवान फल ही की प्राप्ति होती है, अविनाशी की नहीं। इसलिए वेदों में वर्णित सकाम अनुष्ठान करने वाले मनुष्य स्वर्गलोक को जाते हैं और पुण्य क्षीण होने पर पुनः मृत्युलोक में आ जाते हैं। तो इस प्रकार वे जन्म मरण के बंधन में पड़े रहते हैं। तो अनुष्ठान वो अच्छा है जो निष्काम भाव से किया गया हो, क्योंकि निष्काम कर्म रूप अनुष्ठान से ही परमात्मा की प्राप्ति होती है और जन्म मरण के बंधन से मुक्ति होती है। तो वेदों में केवल स्वर्ग प्राप्ति के साधन स्वरूप सकाम अनुष्ठानों का ही वर्णन हो, ऐसी बात नहीं है। उनमें परमात्मा प्राप्ति के साधन रूप श्रवण मनन निधिध्यासन, प्राणायाम, समाधि आदि अनुष्ठानों का भी वर्णन हुआ है। तो यज्ञों का वर्णन सुनकर ऐसी जिज्ञासा होती है कि उन यज्ञों में से कौन सा यज्ञ श्रेष्ठ है। अब इसका समाधान भगवान आगे के श्लोक में करते हैं। कहते हैं,
श्रेयान् द्रव्यमयाद्यज्ञा यज्ञान यज्ञः परन्तपः सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते।
हे परंतप अर्जुन, द्रव्यमय यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। संपूर्ण कर्म और पदार्थ ज्ञान तत्व ज्ञान में समाप्त अथवा लीन हो जाते हैं। तो जिन यज्ञों में द्रव्यों यानी पदार्थों तथा कर्मों की आवश्यकता होती है, वे सब यज्ञ द्रव्यमय होते हैं। जैसे मिट्टी की प्रधानता वाला पात्र मृणमय कहलाता है, ऐसे ही द्रव्य की प्रधानता वाला यज्ञ द्रव्यमय कहलाता है। ऐसे द्रव्यमय यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है, क्योंकि ज्ञान यज्ञ में द्रव्य और कर्म की आवश्यकता नहीं होती। तो अंतःकरण में तीन दोष रहते हैं, मल यानी संचित पाप, विक्षेप यानी चित्त की चंचलता और आवरण यानी अज्ञान। तो अपने लिए कोई भी कर्म न करने से अर्थात संसार मात्र की सेवा के लिए ही कर्म करने से जब साधक के अंतःकरण में स्थित मल और विक्षेप दोनों दोष मिट जाते हैं, तब वह ज्ञान प्राप्ति के द्वारा आवरण दोष को मिटाने के लिए कर्मों का स्वरूप से त्याग करके गुरु के पास जाता है। उस समय वह कर्मों और पदार्थों से ऊंचा उठ जाता है, अर्थात कर्म और पदार्थ उसके लक्ष्य नहीं रहते, एक चिन्मय तत्व ही उसका लक्ष्य रहता है। यही संपूर्ण कर्मों और पदार्थों का तत्व ज्ञान में समाप्त होना भी कहलाता है। तो शास्त्रों में ज्ञान प्राप्ति के 8 अंतरंग साधन बताए गए हैं, विवेक, वैराग्य, शम, दम, श्रद्धा, उपरति, तितीक्षा और समाधान, मुमुक्षुता, श्रवण, मनन, निधिध्यासन और तत्व पदार्थ संशोधन। तो इनमें सबसे पहला साधन है विवेक, जो सत और असत को अलग अलग जानकर असत का त्याग करना अथवा संसार से विमुख होना वैराग्य है। इसके बाद आती है शमादि षट संपत्ति, यानी मन को इंद्रियों के विषयों से हटाना शम कहलाता है, इंद्रियों को विषयों से हटाना दम कहलाता है, ईश्वर शास्त्र आदि पर पूज्य भावपूर्वक प्रत्यक्ष से भी अधिक विश्वास करना श्रद्धा है, वृत्तियों का संसार की ओर से हट जाना उपरति है, सर्दी गर्मी आदि द्वंद्वों को सहना उनकी उपेक्षा करना है तितीक्षा, अंतःकरण में शंकाओं का न रहना समाधान है, और इसके बाद चौथा साधन है मुमुक्षुता यानी संसार से छूटने की इच्छा। तो अब मुमुक्षुता जागृत होने के बाद साधक पदार्थों और कर्मों का स्वरूप से त्याग करके क्षोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास जाता है। अब गुरु के पास निवास करते हुए शास्त्रों को सुनकर तात्पर्य का निर्णय करना तथा उसे धारण करना श्रवण है। श्रवण से प्रमाणगत संशय दूर हो जाता है और परमात्म तत्व का युक्ति प्रयुक्तियों से चिंतन करना मनन कहलाता है। मनन से प्रमेयगत संशय दूर हो जाता है। संसार की सत्ता को मानना और परमात्म तत्व की सत्ता को न मानना विपरीत भावना कहलाती है। विपरीत भावना को हटाना निधिध्यासन है। प्राकृत पदार्थ मात्र से संबंध विच्छेद हो जाए और केवल एक चिन्मय तत्व शेष रह जाए, यह तत्व पदार्थ संशोधन कहलाता है। इसे ही तत्व साक्षात्कार भी कहते हैं। तत्व साक्षात्कार यानी जो सांसारिक भोग और संग्रह में लगे हुए हैं ऐसे मनुष्यों के द्वारा श्रवण होता है, शास्त्रों का मनन होता है, विषयों का निधिध्यासन होता है और साक्षात्कार होता है दुखों का। तो विचार पूर्वक देखा जाए तो इन सब साधनों का तात्पर्य है असाधन अर्थात असत के संबंध का त्याग। त्याज्य वस्तु अपने लिए नहीं होती, पर त्याग का परिणाम अपने लिए होता है, उसी को कहते हैं तत्व साक्षात्कार। तो अगला श्लोक है,
तद्विद्धि प्राणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम् ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः।
यानी उस तत्व ज्ञान को तत्वदर्शी ज्ञानी महापुरुषों के पास जाकर समझ, उनको साष्टांग दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वे तत्वदर्शी अनुभवी ज्ञानी शास्त्रज्ञ महापुरुष तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश देंगे। तो यहां अर्जुन ने पहले कहा था कि युद्ध में स्वजनों को मारकर मैं हित नहीं देखता, तो अब भगवान यहां अर्जुन से मानो कह रहे हैं कि अगर तू कर्मों का स्वरूप से तत्व ज्ञान प्राप्त करने को ही श्रेष्ठ मानता है तो तू किसी तत्वदर्शी ज्ञानी महापुरुष के पास ही जाकर विधिपूर्वक ज्ञान को प्राप्त कर, मैं तुझे ऐसा उपदेश नहीं दूंगा। वास्तव में यहां भगवान का अभिप्राय अर्जुन को ज्ञानी महापुरुष के पास भेजने का नहीं है कि जैसे कोई महापुरुष किसी को उसके कल्याण की बात कह रहा है पर श्रद्धा की कमी के कारण सुनने वाले को वह बात नहीं जचती तो वह महापुरुष उससे कह देता है कि तो तू किसी और के पास जाकर अपने कल्याण का उपाय पूछ। ऐसे ही भगवान मानो यह कह रहे हैं कि अगर तुझे मेरी बात नहीं जचती तो तू किसी और ज्ञानी पुरुष के पास चला जा और जाकर विधिपूर्वक ज्ञान प्राप्त कर। तो तत्व ज्ञान प्राप्त करने की प्रचलित प्रणाली का वर्णन करके अब भगवान आगे के तीन श्लोकों में तत्व ज्ञान का वास्तविक माहात्म्य बताते हैं। तो कहते हैं,
यज्ञात्वान पुनर्मोहमेवम् यास्यसि पांडव येन भूतान्यशेषेण द्रक्षस्यात्मन अन्यथो मयि।
यानी जिस तत्व ज्ञान का अनुभव करने के बाद तू फिर इस प्रकार मोह को नहीं प्राप्त होगा, और हे अर्जुन, जिस तत्व ज्ञान से तू संपूर्ण प्राणियों को निशेष भाव से पहले अपने में और उसके बाद मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा में देखेगा। तत्व ज्ञान अथवा अज्ञान का नाश एक ही बार होता है और सदा के लिए हो जाता है। तात्पर्य है कि तत्व ज्ञान की आवृत्ति नहीं होती, आवृत्ति अर्थात रिपीटिशन, तत्व ज्ञान दोबारा नहीं होता। एक बार वह एक बार अनुभव में आ गया तो सदा के लिए आ गया। कारण कि जब अज्ञान की स्वतंत्र सत्ता ही नहीं है तो फिर पुनः अज्ञान कैसे होगा। अतः नित्य निवृत्त अज्ञान की ही निवृत्ति होती है और नित्य प्राप्त तत्व की ही प्राप्ति होती है। स्वयं सत्ता मात्र तथा बोध स्वरूप है। बोध का अनादर करने से हमने असत को स्वीकार किया और असत को स्वीकार करने से अविवेक हुआ। तात्पर्य है कि बोध से विमुख होकर हमने असत को सत्ता दी और असत को सत्ता देने से विवेक का अनादर हुआ। बोध एक ही बार होता है और सदा के लिए होता है। तो यहां सब कुछ भगवान ही है, इस प्रकार समग्र का ज्ञान परमात्म ज्ञान है। आत्मज्ञान से मुक्ति तो हो जाती है पर सूक्ष्म अहम की गंध रह जाती है, तो जिससे दार्शनिकों में उनके दर्शनों में मतभेद रहता है। तो अगर सूक्ष्म अहम की गंध न हो तो फिर मतभेद कहां से आया। परंतु परमात्म ज्ञान से सूक्ष्म अहम की गंध भी नहीं रहती और उससे पैदा होने वाले संपूर्ण दार्शनिक मतभेद समाप्त हो जाते हैं। तात्पर्य हुआ कि जब तक आत्मनि है तब तक दार्शनिक मतभेद हैं। जब वासुदेव सर्वम का अनुभव होने पर सब मतभेद मिट जाते हैं तब अथोमयी हो जाता है। अथोमयी में एक परमात्मा के सिवाय दूसरी कोई सत्ता नहीं है। तो अगला श्लोक है,
अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृतम् सर्वं ज्ञानप्लवेनैव ऋजिनं संत हरिष्यसि।
यानी अगर तू सब पापियों से भी अधिक पापी है तो भी तू ज्ञान रूपी नौका के द्वारा निस्संदेह संपूर्ण पाप समुद्र से अच्छी तरह तर जाएगा। तो यहां भगवान ने पाप करने वालों की तीन श्रेणियां बताई हैं। एक पापकृत अर्थात पाप करने वाला, दूसरी पापकृतर अर्थात दो पापियों में से एक से अधिक पाप करने वाला, तीसरी पापकृतम अर्थात संपूर्ण पापियों में से सबसे अधिक पाप करने वाला। तो यहां पापकृतम पद का प्रयोग करके भगवान कहते हैं कि अगर तू संपूर्ण पापियों में भी अत्यंत यानी सबसे अधिक पाप करने वाला है तो भी तत्व ज्ञान से तू संपूर्ण पापों से तर सकता है। यदि कहीं 100 वर्षों से घना अंधेरा छाया हो और वहां एक दीपक जला दिया जाए तो उस अंधेरे को दूर करके प्रकाश करने में दीपक को 100 वर्ष नहीं लगते। प्रकाश तो दीपक जलाते ही तुरंत हो जाता है और तुरंत अंधेरा मिट जाता है। तो इसी तरह तत्व ज्ञान होते ही पहले किए गए संपूर्ण पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। भगवान ने पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृतमः पदों से पापी की आखिरी हद बता दी है। पहले पापकृत होता है, फिर पापकृतर और फिर पापकृतम। तात्पर्य निकला कि संपूर्ण संसार में जितने भी पापी हो सकते हैं उन संपूर्ण पापियों से भी जो अधिक पापी है उसको भी ज्ञान प्राप्त हो सकता है। कारण कि पाप कितने ही क्यों न हो हैं वे असत ही, जबकि ज्ञान सत है और सत के आगे असत टिक नहीं सकता। पाप अपवित्र है जबकि ज्ञान परम पवित्र है। अपवित्र वस्तु पवित्र वस्तु को कैसे अटका सकती है? अतः पापों में ज्ञान को अटकाने की ताकत नहीं है। ज्ञान प्राप्ति में खास बाधा है नाशवान सुख की आसक्ति। तो भोग आसक्ति के कारण ही मनुष्य की परमार्थिक विषय में रुचि नहीं होती और रुचि न होने से ही ज्ञान की प्राप्ति बड़ी कठिन प्रतीत होती है। तो आज इतना ही। इस अध्याय के आखिरी 5 श्लोक लेके मैं कल प्रस्तुत रहूंगी आपके सामने। तब तक के लिए आपसे विदा। जय श्री कृष्ण।